भज गौरांग कहो गौरांग लह गौरांग नाम रे जय जन गौरांग भजे जय अमर प्राण रे जय जन गौरांग भजे जय अमर प्राण रे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिव सदे गौर भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदे गौर भक्त वृंद हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा सीता गौर हरि बोल हरि बोल सीता गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की हरे कृष्णा। आज हम यहाँ मुरलीधर मंदिर में एकत्र हुए हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि का अनुष्ठान बनाने के लिए। वैसे भगवान का श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस तो गौर पूर्णिमा कई दिनों पहले हो चुका, लेकिन फिर भी आध्यात्म में और भगवान के धाम में समय की कोई पाबंदी या सीमा नहीं रहती है। किसी भी दिन अगर हम भगवान के अनुष्ठान को मनाएं, हमें लाभ तो अवश्य मिलता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो भगवान का न ही जन्म होता है न ही मरण होता है। जब आत्मा का भी जन्म और मरण नहीं होता है तो भला भगवान का कैसे हो सकता है। न जायते म्रियतो वा कदाचिन् नायं भूत्व भवितवान भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि आत्मा का ना तो जन्म है न उसकी मृत्यु है, अनादिकाल से हमेशा आत्मा रहा है और आगे रहेगा। तो ठीक उसी तरह से भगवान भी हमेशा रहते हैं, अपने धाम में विद्यमान हैं, लेकिन बीच बीच में अपने विभिन्न बड़े आकर्षक रूपों में वो इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ जो संसार में बद्ध जीव हैं, जो अज्ञान की वजह से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कृपा करके उनका उद्धार करने के लिए, जो व्यक्ति भगवत विज्ञान में निपुण है उसके लिए एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक शब्द के अलावा वो और कुछ नहीं जानता है और वो है कृपा। कृपा के ऊपर सब कुछ निर्भर है। कृपा क्या वस्तु है? कृपा वो वस्तु है जो किसी को दी जाती है जबकि उसका कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे एक विद्यार्थी है, वो फेल होने के लिए योग्य है, लेकिन अध्यापक उसको 10 मार्क देकर बढ़ा देते हैं, पास करा देते हैं, तो अध्यापक की कृपा हो गई, क्योंकि विद्यार्थी इस योग्य नहीं था पास होने के लिए, लेकिन फिर भी अध्यापक ने उदार हृदय करके विद्यार्थी को पास करा दिया। तो जब हम किसी वस्तु के लिए अधिकारी नहीं होते हैं, हमारा कोई हक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी देने वाला उदार हृदय से दे देता है, बिना कोई अपेक्षा के, बिना कोई स्वार्थ के, केवल दूसरे के भलाई के लिए, इसको कृपा बोलते हैं। तो कृपा में कोई लेन देन की बात नहीं होती है, कृपा में कोई योग्यता की बात नहीं होती है, बिल्कुल जो उदार हृदय से खुलेआम दिया जाता है उसको कृपा बोलते हैं। तो अगर हम बड़े गौर से, गंभीरता से इस संसार का, हमारे अस्तित्व का विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सब कुछ भगवान के कृपा के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन आजकल नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ गई है। कई लोग ये पूछते हैं या ये तर्क करते हैं कि जैसे हमारी बुद्धि है और हमारे तर्क शक्ति है, हमारा विज्ञान है, जिस हद तक हमारा विज्ञान और हमारी बुद्धि तर्क शक्ति है उस हद तक हम विश्वास करते हैं, हमारी श्रद्धा रखते हैं। आप ये जो भगवान की बात करते हो, भगवान की कृपा, इसके अंदर हम विश्वास नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार है और इनकी विशेष बात यह है कि ये कृपा के अवतार हैं। कृपा देने के लिए इस कलयुग में अवतार लिए हैं। उनके बारे में कई ग्रंथ हैं, उनमें से प्रमुख ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, जिनकी रचना एक बड़े महान भक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने की है। और ऐसे जो तार्किक लोग होते हैं उनको संबोधन करते हुए श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिले चित्त पावे चमत्कार। वो बोलते हैं अगर आप तर्क पसंद करते हैं और आपको विज्ञान इत्यादि पसंद है, विश्लेषण करना पसंद है, तो विश्लेषण कीजिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर, क्योंकि ऐसे गहराई से विचार करके विश्लेषण करने के बाद में आपको पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी विशेष है, कितना कृपालु अवतार है ये भगवान का। साधारण जीवन में भी हम देख सकते हैं कि हम कितनी चीजें जो भगवान ने हमें दी हैं प्रकृति में, हम इनको यूं ही स्वीकार करते हैं, उनके बारे में सोचते भी नहीं है। जैसे हम सांस लेते हैं, हर क्षण सांस ले रहे हैं, जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक हम सांस लेते रहते हैं। लेकिन कितनी बार हम सोचते हैं कि ये भगवान की कृपा से हम सांस ले रहे हैं। जो व्यक्ति जिसको दमे की बीमारी होती है, अस्थमा की, वो जानता है कि सांस लेना कितना कठिन होता है कभी कभी। लेकिन जब हमें कठिनाई नहीं होती है तो हम भूल जाते हैं भगवान को, सांस ले रहे हैं, सोचते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की वजह से हम सांस ले रहे हैं, या अभी हम खा रहे हैं तो चबाने की शक्ति है, पचन करने की शक्ति, ये भी भगवान की शक्ति है। अहम वैश्वानरो भूतवा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं शरीर के अंदर जठर अग्नि हूँ, जठर अग्नि की वजह से शरीर की पचन शक्ति आ जाती है। तो भगवान का यह जठर अग्नि का रूप, अगर भगवान ने सोचा कि मैं अभी कृपा बंद कर दूं, पेट के अंदर से पचन शक्ति नहीं होगी, कुछ खा नहीं पाएंगे, खाएंगे तो पचन नहीं होगा, तो इस तरह से अगर थोड़ा कुछ हम विश्लेषण भी करेंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं, तो हमें पता चलेगा कि हर क्षण हर दृष्टि में हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। कितने निर्भर हैं? 100%। उंगली उठाने के लिए भी हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। जिनको पैरालिसिस हो जाता है शरीर का, शरीर बिल्कुल अटक जाता है, फिर वो पहचान सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये। एक उंगली उठाने के लिए हमें हृदय में स्थित परमात्मा की अनुमति चाहिए होती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढानि मायया। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मैं सारे प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ, और हृदय में बैठकर मैं सब प्राणियों के भ्रमण का निर्देशन करता हूँ। कौन कहाँ पे जाता है, कौन कैसे आता है, जब दो व्यक्तियों का मिलन होता है तो हम कहते हैं कि ये अकस्मात हो गया, अचानक हो गया, बाय चांस हो गया। लेकिन चांस से अकस्मात कुछ भी नहीं होता है, सब भगवान के निर्देशन के अनुसार हो रहा है। और हमारे हृदय में बैठकर वो प्रकृति को आदेश दे रहे हैं, और फिर प्रकृति ही हमारे उंगली को उठा रही है। ये संसार में सारे काम प्रकृति के अनुसार हो रहे हैं, लेकिन भगवान बताते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये प्रकृति के पीछे भी कोई प्रकृति का नियंत्रण करता है। प्रकृति तो जड़ वस्तु है, उसको चलाने वाला एक अधिकारी व्यक्ति चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं वो अधिकारी व्यक्ति हूँ, मेरे निर्देशन के अनुसार ये सारी प्रकृति चलती है। तो आत्मा ये शरीर के अंदर निवास करता है, लेकिन आत्मा के साथ में परमात्मा भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार करके प्रत्येक हृदय में आत्मा के साथ में निवास करने की का निर्णय लिया है, और हर जन्म में परमात्मा आत्मा के साथ में जाता है। जब आत्मा एक शरीर को त्यागता है, दूसरे शरीर में जाता है, तो परमात्मा उसके साथ में जाता है। इतना ही नहीं, दूसरे शरीर की व्यवस्था भी परमात्मा करते हैं हृदय में, कर्मणा दैव नेत्रेण। तो इस तरह से भगवान के आयोजन से, भगवान की व्यवस्था से हर जीव को अपने अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर मिलता है। तो ये सब भगवान की कृपा है। जो पशु, जो व्यक्ति बहुत मांस खाना चाहता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, बोलते हैं तुम बहुत मांस खाना चाहते हो तो ये शरीर तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूँ, तुमको एक पशु का शरीर देता हूँ और उस पशु शरीर में जितना चाहे उतना मांस खाओ। भगवान की कृपा। किसी जीव को मनुष्य शरीर से लेकर पशु शरीर मिलता है उसके इच्छा को पूर्ति के लिए। और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है 12 घंटे 14 घंटे दिन में, तो भगवान बोलते हैं तुम सोना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा की सारी इच्छाओं की पूरी कर दूंगा मैं, तुम्हें एक भालू का शरीर दे दूंगा, तो 6 महीने साल में सो आराम से, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये भी भगवान की कृपा। हमें नीच योनि मिलती है, ये भी भगवान की कृपा। ऊंच योनि मिलती है, वो भी भगवान की कृपा। मनुष्य योनि, वो भी भगवान की कृपा। और हरेक योनि में परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजे हैं और हरेक हमारे कार्य को, हमारे विचार का नियंत्रण करते हैं। विचार करने की शक्ति हमारे अंदर है, कभी कभी भगवान वो भी निकाल सकते हैं। कितनी बार हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ उत्तर नहीं होता है जवाब के लिए, हम कुछ बोलना चाहते हैं स्तब्ध रह जाते हैं, कितनी बार ऐसे होता है। तो भगवान हमसे वचन छीन लेते हैं। हर चीज में, हर क्षण में हम भगवान के कृपा के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो जो व्यक्ति विश्लेषण करके देखता है वो समझ लेता है इस बात को। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हर जीव जो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होता है उसे आभारी रहना चाहिए। आभारी रहकर जो कार्य करते हैं उनको भक्त कहते हैं। जो व्यक्ति सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, अपने बल से, अपने बुद्धि से मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वो ये नहीं जानते हैं कि सब कुछ भगवान ने ही दिया है। उनका जो भी बल है भगवान ने दिया है। बलम बलवताम चाहम, गीता में भगवान बताते हैं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धि देने वाले भगवान, बल देने वाले भगवान, देह देने वाले भगवान, हमारे परिस्थिति का निर्माण करने वाले भगवान, हमारे साथी को देने वाले भगवान, सब कुछ भगवान ही देते हैं, तो हमारा क्या अधिकार है? हमारा कुछ भी नहीं है। अगर हम उंगली भी उठा सकते हैं, आपके पलके भी हिला सकते हैं, पचन कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हर चीज के लिए हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। हमारी स्वतंत्रता केवल इसमें है कि हम क्या इच्छा कर सकते हैं, बस इच्छा करना हमारा काम, बाकी काम भगवान का। तो देखिए, शत प्रतिशत भगवान के ऊपर निर्भर। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो जानता है कि मैं केवल भगवान की कृपा का ही बना हुआ हूँ और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमें इस संसार में भेजते हैं उनकी कृपा के लिए, इस संसार में हमें संसार के चक्र में बांध के रखते हैं उनकी कृपा देकर, और इस संसार से मुक्त भी करते हैं उनकी कृपा देकर। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत। वो कहते हैं कि जो जीव को भगवान से अलग होकर, मुझसे अलग होकर भोग करने की इच्छा होती है तो मैं उसे ये संसार में भेज देता हूँ। तो भगवान के धाम से लेकर जीव का पतन जब ये संसार में होता है वो भी भगवान की कृपा है। और फिर बारंबार संसार के चक्र में रहने के बाद जब जीव के होश ठिकाने आ जाते हैं, जब वो सोचता है कि बहुत जन्मों से मैं यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, भगवान से विमुख हो गया हूँ, अभी मुझे इस संसार के चक्र से छूट कर भगवान के धाम में जाना है, तब भी भगवान की कृपा आवश्यक होती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। बार बार युग युग में मैं अवतीर्ण होता हूँ धर्म की संस्थापना करने के लिए। अधर्म जब बढ़ जाता है और धर्म की ग्लानि जब हो जाती है तो मैं यहाँ आकर धर्म की स्थापना करता हूँ, लोगों के ऊपर कृपा देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जब 5000 वर्ष पूर्व आए थे तो उन्होंने अपने सुंदर सुंदर लीलाओं का प्रदर्शन किया, उनके सुंदर उपदेशों को अर्जुन को और अन्य भक्तों को दिया, और जिससे कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलकर हम उनके धाम में पहुंच सकें। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि जब उद्धव जी विदुर जी को मिले थे, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया था और यदुकुल भी विनाश हो गया था और विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकले थे और उद्धव भी वहां पर आए और उद्धव और विदुर की मुलाकात हुई, ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में आता है। और जब दोनों बातचीत कर रहे थे तो स्वाभाविक है कि दो भक्त मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की बात तो करेंगे ही करेंगे। तो विदुर ने उद्धव से पूछा कि ये बताइए कि हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वो द्वारका में उनका सब कुशल मंगल है? उनकी पथरानियां कैसी हैं और उनके पुत्र अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सांब इत्यादि वो सब कैसे हैं? तो ऐसे जब उन्होंने प्रश्न किए तो कृष्ण का नाम सुनकर ही उद्धव बिल्कुल भाव विभोर हो गए। ये भक्ति या प्रेम का लक्षण है। जब हम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसका नाम सुनकर ही हमें एक प्रकार का उत्साह मिल जाता है। जब किसी व्यक्ति को उदाहरणार्थ शराब पीने की बहुत आदत है, उसको शराब बोलिए, अचानक उसके हृदय में एक तरह का उत्साह आ जाता है, क्योंकि वो शराब से बहुत प्रेम करता है, उसको बहुत इच्छा है शराब पीने की, तो शराब नाम सुनकर उसको उत्साह मिल जाता है। किसी व्यापारी को पैसे की बात कीजिए, पैसा शब्द बोलिए तो उसके हृदय में उत्साह आ जाता है। उसी तरह से आप भगवान के भक्तों को कृष्ण नाम कहिए, अचानक उनको उत्साह आ जाता है। तो जब विदुर ने कृष्ण का नाम लिया तो उद्धव को बड़ा उत्साह आया और भाव विभोर होकर वो दो क्षण के लिए स्तब्ध हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने कहा, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यत् अप्य साधवी लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वो कहने लगे, हे विदुर जी, मैं उस भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या बताऊं? वो उन जैसा कृपालु व्यक्ति यह संसार में कौन मिल सकता है? जब पूतना राक्षसी बाल कृष्ण के पास आई थी स्तन पान कराने के लिए आई थी, लेकिन अपने स्तनों पर जो विष डाला था उस विष को पिलाकर भगवान श्री कृष्ण की हत्या करना चाहती थी, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि पूतना उनको मारने आई है। उन्होंने ये देखा कि पूतना उनको दूध पिलाने आई है। बच्चे को दूध कौन पिलाता है? माँ पिलाती है। तो कृष्ण भगवान ने ये देखा कि ये माँ की तरह मेरे पास आई है, तो उन्होंने ये अच्छा गुण देखा, बुरा गुण नहीं देखा कि वो मुझे मारने आई है। तो अच्छा गुण देखकर उन्होंने ये नहीं देखा कि ये राक्षसी है। माँ का स्वरूप को स्वीकार करके जब उन्होंने पूतना का वध किया, पूतना का स्तनपान करके उनके दूध के साथ साथ प्राण भी खींच लिए, उस समय उन्होंने पूतना को स्थान दिया अपने धाम में, गोलोक वृंदावन में, अपने एक धात्री का रूप दिया, माता यशोदा के एक सहेली का एक रूप उनको दे दिया। ये जो गति है ये बड़े बड़े सन्यासियों को भी नहीं मिलता है, जो हिमालय में जाते हैं, वैराग्य का जीवन बिताते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, उनको भी ऐसी गति नहीं मिलती है। तो एक राक्षसी को वो कैसे गति मिल गई? क्योंकि वो माँ का रूप लेकर आए थे। इसका मतलब क्या है कि भगवान हमारे अंदर जो अच्छा है उसको देखते हैं, जो बुरा है उसको हमें शुद्ध कर देते हैं उससे। तो ये हमारे लिए भी एक सबक है कि हम दूसरों के साथ में जब मिलते हैं, संसार में रहते हैं, तो लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना हमेशा रहता है। तो हमें इनके बीच में जो अच्छा है वो देखना चाहिए, जो बुरा है वो नहीं देखना चाहिए, और अच्छे के अनुसार लोगों के साथ में हमारा संबंध स्थापित करना चाहिए। तो उद्धव ने कहा कि देखो, कृष्ण भगवान से ज्यादा कृपालु कौन हो सकता है संसार में, जिन्होंने ऐसे राक्षसी को भी माता यशोदा जैसा स्थान उनके धाम में दे दिया है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। पूतना बिल्कुल अधिकारी व्यक्ति नहीं थी, उसके अंदर एक ही गुण था, और वो था कि पिछले जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण ने वामन देव का रूप धारण किया था और बलि महाराज के ऊपर कृपा करने आए थे, तो सुंदर बाल ब्रह्मचारी के रूप को देखकर जो बलि महाराज की बहन थी जिनका नाम था रत्नमाला, उसके हृदय में एक वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया उस बालक के प्रति। उसने सोचा कि कितना सुंदर बच्चा है, काश मैं इसको दूध पिला सकती, काश मैं इस बच्चे की माँ बन सकती, ये भावना हुई। लेकिन बाद में जब वामन देव ने अपना असली स्वरूप दिखाया और अपना विश्व रूप धारण करके सारे ब्रह्मांड में अपना एक पैर डाल दिया, पहला कदम स्वर्गलोक, दूसरा कदम ब्रह्मांड के आवरण को छेद कर दिया और उसमें से विरजा का जल आके गंगा जी बन गया, गंगा का जल बन गया, इसलिए गंगा जी को चरणामृत कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करके आया है। तो इस तरह से वामन देव ने दो कदम लिए, लेकिन तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं था। तो वामन देव ने बलि महाराज से पूछा था कि हे राजन, आपने मुझे वचन दिया है कि आप मुझे 3 पग जमीन दोगे, तो मैंने केवल 2 पग लिए हैं, तो तीसरा कदम रखने के लिए कहाँ जगह है। उस समय बलि महाराज ने कहा था कि हे प्रभु, आप मेरे सर पे आपका तीसरा कदम रख सकते हैं। तो जब भगवान ने वामन के रूप में उनका सब कुछ हरण कर लिया, ये भी भगवान की कृपा थी, और जब उनका सर बलि महाराज के ऊपर रख दिया, वो भी उनकी कृपा थी। शुक्राचार्य जो कि बलि महाराज के गुरु थे, उन्होंने कहा कि अरे हे मूर्ख बलि, तुम नहीं जानते हो कि ये तुम्हारा शत्रु है, ये विष्णु का रूप है, देवताओं का पक्ष लेकर तुमसे सब कुछ हरण करने के लिए आया है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, इस ब्रह्मचारी को कुछ भी मत देना। तो बलि महाराज ने जवाब दिया कि यह कैसे संभव है, जब कोई ब्राह्मण हमारे घर में आता है तो हमें उसे दान देना चाहिए, जो भी वो मांगता है उसे देना चाहिए, और अगर ये बाल ब्रह्मचारी स्वयं विष्णु हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं इनकी इच्छा को पूर्ण करूं। इससे बड़ा जीवन में हमारे यश क्या हो सकता है कि स्वयं भगवान विष्णु हमारे घर में आए, हमारे दरबार में आए और हमसे कुछ दान मांगे, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात कौन सी हो सकती है। और अगर उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया, ये तो और भी बड़ी सौभाग्य की बात है, ये तो उनकी और भी बड़ी कृपा हो गई। तो बलि महाराज आखिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके दादा का नाम क्या था, प्रहलाद, और प्रहलाद भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो बलि महाराज को भी प्रहलाद महाराज के संस्कार मिले थे, इसलिए बलि महाराज असुर होने के नाते भी उनके हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति की भावना थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने हमसे सब कुछ भी हरण कर लिया, तो फिर भी मैं उनकी कृपा समझकर इसे स्वीकार करूंगा। हरि सब कुछ वैसे हरण करते ही हैं, क्योंकि हरि का नाम ही है जो हरण करने वाले हैं, हर धातु से आता है शब्द हरि। तो इसलिए बलि महाराज ने अपने गुरु के भी आज्ञा का उल्लंघन किया, इससे हम समझ सकते हैं कि वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य को भगवान के खिलाफ ले जाता है, भगवान के शरणागति में जाने के बजाय भगवान से शरणागति से दूर ले जाता है, वो प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता है। तो इस समय जब भगवान श्री विष्णु ने अपना वामन स्वरूप दिखाकर सब कुछ हरण कर लिया बलि महाराज का, तो उस समय रत्नमाला का विचार बदल गया। जो ममता और वात्सल्य की भावना लेकर रत्नमाला उस ब्रह्मचारी की ओर देख रही थी, अभी वो विचार बदल कर एक क्रोध या द्वेष की भावना जागृत हुई और रत्नमाला ने विचार किया कि अरे ये विष्णु है, ब्रह्मचारी नहीं है, और ये विष्णु ने मेरे भाई को धोखा दिया है और मेरे भाई को फकीर बना दिया है, मेरे भाई से सब कुछ छीन लिया है। पहले मेरे भाई की संपत्ति थी तीनों भुवनों के, भूलोक, भुवर लोक और स्वर्ग लोक के मालिक थे, स्वामी थे, लेकिन आज इनका कुछ ही नहीं रहा, तो मैं इस बाल ब्रह्मचारी को विष पिलाकर मार डालना चाहती हूँ। तो दोनों तरह की इच्छाएं थी रत्नमाला के हृदय में। तो भगवान श्री हरि ने सोचा कि ठीक है, मेरी कृपा है कि मैं सब व्यक्तियों को अपने अपने इच्छा पूर्ति के लिए अवसर देता हूँ। तो उन्होंने रत्नमाला की इच्छा रत्नमाला के अगले जीवन में पूरी कर दी और फिर रत्नमाला का जन्म पूतना के रूप में हुआ। वही रत्नमाला पूतना बनकर भगवान श्री कृष्ण के पास आई, उनको माँ के रूप में स्तनपान करने का अवसर मिला और कृष्ण की हत्या करने का प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनका उद्धार कर लिया। तो यह इतिहास जिससे हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं, हमारे बुराइयां नहीं देखते हैं, अच्छी बात देखते हैं। लेकिन फिर भी रत्नमाला के अंदर ये एक गुण था कि कम से कम पहले जब रत्नमाला ने बाल ब्रह्मचारी वामन देव का दर्शन किया, उसके अंदर एक ममता, वात्सल्य, प्रेम की भावना जागृत हुई और इस प्रेम को देखा। तो भगवान श्री कृष्ण भी कोई अच्छे गुणों के लिए देखते हैं हमारे अंदर। जब वो आए थे 5000 वर्ष पूर्व तो उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग करो हे अर्जुन और केवल मेरे शरण में आओ, और ऐसा करने से मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण एक शर्त रख रहे हैं कि हमें उनके शरण में जाना चाहिए और शरण में जाने के बाद में फिर हमारे ऊपर वो कृपा बरसाएंगे। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु होते हुए भी उनकी कृपा की सीमा है, वो शर्त रख रहे हैं। लेकिन वही कृष्ण भगवान सोचने लगे कि ये कलयुग में जीव इतने पतित हैं, इतने पापी हैं कि उनके अंदर एक भी अच्छा गुण नहीं दिख रहा है, तो इनके उद्धार के लिए हमको क्या करना चाहिए। तब उन्होंने सोचकर चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया, क्योंकि इस चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो बिल्कुल पात्रता नहीं देखते हैं। रत्नमाला के अंदर कम से कम एक अच्छा गुण था, कम से कम थोड़ी भक्ति की भावना थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये शर्त भी नहीं रखा। पापी से पापी व्यक्ति भी हो, जिसके अंदर दुर्गुण भरे हुए हो, जो बिल्कुल दुराचारी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति कलयुग में बहुत भरे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा दुराचारी लोग ही मिलते हैं कलयुग में। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि अगर कलयुग में किसी को कृष्ण भक्ति करनी हो, और हरेक व्यक्ति को करना चाहिए, तो फिर चैतन्य महाप्रभु को समझे बिना ये नहीं हो सकता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वही श्री कृष्ण है जो कि इस कलयुग में अवतार लिए हैं इस युग धर्म का उद्घाटन करने के लिए। ये युग धर्म है हरिनाम का संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु ने उद्घाटन किया, इसलिए उनके माध्यम से जाए बिना हम श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं, कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जीवन को अगर हमें सफल बनाना है इस कलयुग में, तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा आवश्यक है। आचार्यगण समझाते हैं कि इस कलयुग में जो व्यक्ति केवल श्री कृष्ण में विश्वास करता है लेकिन चैतन्य महाप्रभु में नहीं, वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति केवल चैतन्य महाप्रभु में विश्वास करता है और कृष्ण की सेवा नहीं करता है, तो वो भी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति दोनों चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण की सेवा करता है, दोनों की भक्ति करता है, वही एकमात्र अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो ये है चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। रूप गोस्वामी बताते हैं कि महावदान्याय अवतार है ये। इतने कृपालु रूप हैं भगवान के, केवल कृष्ण प्रेम को मुफ्त देने आए हैं। सभी लोगों को कृष्ण प्रेम देते हैं बिना कोई शर्त रखे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उपदेश देते हैं ऋषभदेव महाराज के बारे में, और वो कहते हैं कि देखो, अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उस ज्ञान के बल से वो मुक्त हो सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करता है और अन्य प्रकार के पुण्य काम करता है तो उसे इंद्र तृप्ति का फल मिल सकता है स्वर्ग लोक में, लेकिन भगवान की भक्ति ये नहीं मिल सकती। हजारों हजारों सालों तक यज्ञ कर्म पुण्य कर्म करने से भी भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को या किसी भी व्यक्ति को मोक्ष और इंद्रिय तृप्ति बहुत आसानी से देते हैं, लेकिन भक्ति वो अपने आप छुपा के रखते हैं। भक्ति किसी को आसानी से नहीं देते हैं, मोक्ष भी दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उस भक्ति को मुफ्त में बांटा है। जिस भक्ति को श्री कृष्ण ने इतनी आसानी से नहीं दिया, बहुत अपने हृदय के करीब छुपा के रखा, उस भक्ति के धन को चैतन्य महाप्रभु ने खुलेआम सब जगह बांट दिया, पात्रता अपात्रता न देखते हुए। जगाई और मधाई दो बड़े असुर थे 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। दुराचारी व्यक्ति, बड़े बड़ से बड़े पापी व्यक्ति, लेकिन उनका उद्धार भी चैतन्य महाप्रभु ने किया। और सारे नवद्वीप में जहाँ के महाप्रभु प्रकट हुए थे, वो सारे निवासी वहाँ पे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जगाई मधाई इतने बड़े पापी थे कि सभी लोग उनको बहुत घबराते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों को शुद्ध भक्त बना दिया भगवान श्री कृष्ण का। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने बार बार ऐसे ही लीलाओं की जैसे पापी से पापी व्यक्तियों का उद्धार उन्होंने किया, या पापी व्यक्तियों का उद्धार ऐसे किया तो पुण्यवान लोगों की बात तो दूर है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भगवान के नामों का उच्चारण करना आवश्यक है, लेकिन कृष्ण नाम को लेना इतना आसान नहीं है। कृष्ण नाम का जप और कीर्तन जो व्यक्ति करता है उसमें नाम अपराध होते हैं। हरि नाम के प्रति 10 नाम अपराध बताए जाते हैं शास्त्रों में। और ये नाम अपराध जो व्यक्ति करता है, जितना भी भला वो नाम ले, उसको भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति या प्रेम आसानी से प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का नाम पहले लेता है तो उसे वो जल्दी से नाम अपराध से मुक्त हो जाता है। कृष्ण नाम लेने के लिए अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें नाम अपराध से मुक्त होना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का नाम जो व्यक्ति लेता है वो बहुत जल्दी नाम अपराध से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो महामंत्र सब जगह फैलाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इस महामंत्र के उच्चारण में किसी व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं लिया तो हजारों जन्मों तक भी अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलता रहे, उसे भक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि हम सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास में नहीं जा सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही जाना है। इसलिए बताया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से पहले हमें ये पंच तत्व महामंत्र बोलना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंदा, ये पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करने से अपराधों से हम मुक्त हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं कि वो बिल्कुल अपराध नहीं लेते हैं। कृष्ण भगवान के प्रति अपराध का प्रश्न आता है, इसलिए राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने के लिए हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। लेकिन गौर निताई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की पूजा करने के लिए कोई अपराध नहीं, कोई भी कर सकता है, पापी से पापी व्यक्ति कर सकता है। जिस तरह से श्री कृष्ण का धाम है वृंदावन, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु का धाम है नवद्वीप मायापुर। कृष्ण भगवान के धाम वृंदावन में जाकर हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। बताया जाता है कि हमें 2-3 दिन से ज्यादा वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बाहर रहकर पाप करने के आदि रहते हैं, एक आदत बन जाती है पाप करने की, और हम वृंदावन में जाकर अगर पाप करेंगे तो वो पाप का फल 100 गुना बढ़ जाता है। तो 100 गुना ज्यादा पाप का फल हमें मिलेगा अगर वो पाप हम वृंदावन में करेंगे। हाँ, अगर कृष्ण भक्ति करेंगे वृंदावन में जाकर, उसका भी 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। लेकिन इसमें खतरा है कि पाप गलती से भी करेंगे तो 100 गुना ज्यादा बोझ मिल जाता है उसका। लेकिन जब हम चैतन्य महाप्रभु के धाम में जाते हैं नवद्वीप, उस समय हम जो भक्ति करेंगे उसका 100 गुना ज्यादा फायदा हमें मिलेगा, लेकिन जो पाप करेंगे गलती से तो वो क्षमा हो जाता है। ये है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु अपने चरणों में कोई भी पाप को देखते नहीं है। भक्ति करने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति पाप कर लेता है चैतन्य महाप्रभु के शरण में, फिर भी महाप्रभु नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बार बार पाप करना चाहिए। अभी चैतन्य महाप्रभु बड़े कृपालु अवतार हैं, तो चलो हम भक्ति करेंगे पाप करेंगे, भक्ति करेंगे पाप करेंगे। इसको कुंजर शौच बोलते हैं। हाथी, हाथी नदी में जाता है, स्नान करता है, फिर आके मिट्टी में लोट लेता है, मिट्टी सब शरीर में लग जाती है, तो स्नान का क्या फायदा हुआ? तो ठीक उसी तरह से कोई लोग होते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान मुझे पाप के लिए क्षमा कीजिए, फिर बाहर जाते हैं पाप करते हैं, अगले हफ्ते फिर से आते हैं, भगवान हमको क्षमा कीजिए पाप के लिए। तो ऐसे प्रायश्चित में कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और भगवान के नाम के बल पर अगर हम पाप करेंगे तो ये एक अपराध माना जाता है, 7वां नाम अपराध है। इसलिए ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई जैसे बड़े से बड़े पापियों का उद्धार किया, उनको शुद्ध भक्त बना दिया भगवान श्री कृष्ण का, तो उन्होंने उनको एक ही आदेश दिया कि आज से तुम पाप करना बंद करो। जो भी पाप तुमने पहले किए हो, और बहुत सारे किए थे, जगाई मधाई के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यमराज के सेक्रेटरी जो है चित्रगुप्त, वो जो सब पाप, सब लोगों का पाप पुण्य का नोट करते हैं अपने खाते में, वो बोल रहे थे यमराज से कि मुझे रिटायर होना है। तो यमराज ने पूछा, अरे तुम रिटायर हो गए तो अब काम कौन करेगा, क्यों रिटायर होना है? वो जगाई मधाई नीचे है, इतना पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं कि लिख लिख के मैं थक रहा हूँ, मुझे अब से ये काम नहीं होगा। तो इतने बड़े पापी थे, इतने पाप किए थे उन्होंने, कोई पाप छोड़ा नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, जो भी पाप किए हैं आज तक, ठीक है, लोग हैं कृष्ण का नाम जानते हैं, कृष्ण का उपदेश सुना है, लेकिन कृष्ण के शरण में नहीं जाते हैं। लेकिन ये लोग इतने पापी होने के बाद में, इनको कुछ नहीं मालूम था, कृष्ण का नाम, राम का नाम कभी भी सुना नहीं था इन्होंने, भगवत गीता क्या है, भागवत क्या है, कभी नहीं सुना है। इनमें से कई लोगों ने भारत का नाम भी नहीं सुना था। तो ऐसे लोगों को, जो बुरे से बुरे पतित से पतित लोगों को, आज महाप्रभु की कृपा से ऐसे संत बने हैं जो भारत में आकर भारतीयों को कृष्ण भक्ति के बारे में सुनाते हैं। ये है महाप्रभु की कृपा। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान श्री कृष्ण का नाम इस संसार के हर एक शहर में, हर एक देश में, हर एक गांव में, गली गली में फैलेगा। आज यहाँ कितने सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को पलकी में बैठाकर गांव गांव इधर शहर गली गली में गए थे, इधर इस मोहल्ले में हर एक घर तक गौर निताय पहुंचे। कितने लोगों ने आरती सेवा की, कितने लोगों ने भोग चढ़ाया, कितने लोगों ने दर्शन किया, कितने लोगों ने उनके पवित्र नामों का श्रवण किया। इस तरह से महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने वाले भक्त श्रील प्रभुपाद के संस्था में हर देश में फैले हुए हैं। अब भक्तों की संख्या बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है कोई समझ नहीं सकता। ये है महाप्रभु की कृपा। इस काल में इतने पापी लोग भक्त हो रहे कैसे
स्वामी जी, मैं आपको 7 दिन से वेदांत का पाठ करा रहा हूँ, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आपके चेहरे से भी मुझे पता नहीं चला है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं या नहीं। क्या आपको बहुत कठिन लगा जो मैंने बोला? तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि वास्तव में वेदांत मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन आपने जो वेदांत के ऊपर टीका की है उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वेदांत को आपने ऐसे तोड़ मोड़ दिया है कि वो वेदांत ही नहीं रहा, कुछ और ही हो गया है। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में संवाद हुआ, बहुत सुंदर संवाद। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल सार्वभौम भट्टाचार्य को हरा दिया और ये सिद्ध कर दिया कि जो उनका निष्कर्ष था वो बिल्कुल गलत था। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु का शरण लिया और वो भी श्री कृष्ण के भक्त बने। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सब तरह के लोगों को भक्त बनाया। जब पहले सार्वभौम भट्टाचार्य ने संशय प्रस्तुत किया था गोपीनाथ आचार्य के सामने कि मैं नहीं मान सकता कि ये भगवान है, तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने कहा, हम तो केवल तर्क और अनुमान का प्रमाण मानते हैं, तर्क और अनुमान से जो सिद्ध होता है इसी में हम विश्वास करते हैं। तो हम देखते हैं कि तर्क से हमें ये नहीं पता चलता कि ये भगवान है, इसलिए हम इनको भगवान नहीं स्वीकार कर सकते। तो गोपीनाथ आचार्य ने जवाब दिया कि देखो, तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना, कि शास्त्र तो बहुत है, तर्क से कोई भी बात सिद्ध नहीं हो सकती। आप मृत्यु के दम तक आप तर्क करते रहें फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हम स्वीकार करते हैं भगवान की कृपा से, हम जानते हैं कि यही भगवान है। भगवान की कृपा जब किसी व्यक्ति को होती है तभी वो समझ सकता है कि भगवान कौन है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि बड़े सावधानी से बात करना गोपीनाथ आचार्य, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही, अच्छी बात कही है कि भगवान की कृपा से ही हम जान सकते हैं कि कोई भगवान है। लेकिन ये क्या सबूत है कि आपको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया। तो गोपीनाथ आचार्य ने जवाब दिया कि भगवान की कृपा प्राप्त होने का प्रमाण ये है कि हम साक्षात भगवान को हमारे सामने पहचान पाए हैं, समझ पाए हैं। और क्योंकि आपके ऊपर भगवान की लेश मात्र भी कृपा नहीं है, इसलिए आप उनके ऊपर संशय करते हैं। उस समय उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाया सार्वभौम भट्टाचार्य को, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। उन्होंने कहा कि हे भट्टाचार्य, ये ब्रह्मा जी ने ये श्लोक श्रीमद् भागवत में बताया है, और वो क्या है कि अगर भगवान श्री कृष्ण लेशानुगृहीत, अगर भगवान की लेश मात्र भी कृपा किसी व्यक्ति को मिल गई तो भगवान को वो जान सकता है, लेकिन अगर उसको कृपा नहीं मिली तो हमेशा वो अज्ञान में रहेगा। तो ठीक उसी तरह से हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की लेश मात्र कृपा हमारे ऊपर हुई है, इसलिए इस भगवान को हम पहचान सकते हैं और आप नहीं पहचान सकते हैं। तो कलयुग में कृपा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से अपना परिचय उन्होंने साधारण से साधारण व्यक्ति को इस कलयुग में दिया है। छोटे से छोटा आदमी भी पहचान सकता है कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, लेकिन बड़े से बड़े ज्ञानी भी हैं जो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो भगवान की कृपा उनको नहीं मिलती है। लेकिन एक साधारण अशिक्षित अनपढ़ गरीब भी व्यक्ति होगा, लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा है कि यही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, तो वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो ये है महाप्रभु की कृपा। तो केवल इस अवसर पर हमने अगर महाप्रभु के आदेश के अनुसार हमने अपना जीवन बिताया, सदा कृष्ण नाम लिया और जैसे महाप्रभु ने उपदेश दिया है, त्रिनाद अपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुन अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, तृण से भी अधिक नम्र रहना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील रहना, दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा तैयार रहना और अपने आप के लिए सम्मान की अपेक्षा कभी नहीं करना, ये चार वस्तु अगर हम हमेशा करेंगे तो हम सदा हरि नाम का कीर्तन कर पाएंगे, जो कि इस कलयुग के लिए युग धर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति तीव्र श्रद्धा रखते हुए हमें कृष्ण नाम का संकीर्तन करके, कृष्ण भक्ति प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद हम भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में जा पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम बहुत आभारी हैं आप सबके कि आप यहाँ इतना समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, आप शांति से प्रवचन सुने हैं और उत्साह से आपने पालकी उत्सव में भी और अन्य कार्यक्रम में भाग लिया है। हम कडोलकर परिवार से भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही उत्सव यहाँ भविष्य में मनाते रहें, ताकि यहाँ के इलाके के जो भी लोग हैं उनको चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु की गौर प्रेमानंदे। क्यों ऐसे है? भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के बाद भी भगवान के भक्त को कठिन परिस्थिति में क्यों डाला जाता है, ये प्रश्न है। क्योंकि कठिनाई में ही भक्ति की परीक्षा होती है, कठिनाई में ही पता चलता है कि कौन अच्छा भक्त है और कौन नहीं है। सुख में सब हरि भजे, दुख में भजे न कोई, नहीं? और दुख में जो हरि भजे, सुख में जो हरि भजे, तो दुख कहां से होए, है ना? तो जो पक्के भक्त नहीं होते हैं, वो केवल दुख आता है तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर स्थिति में करते हैं, और उनकी परीक्षा तब होती है जब कोई विपरीत या कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है जीवन में। अगर आप इतिहास देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, सबको कठिन से कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा है। किसी भी भक्त का नाम लीजिए आप, प्रहलाद, प्रहलाद को कितना कष्ट हुआ, और किसने कष्ट दिया प्रहलाद को? खुद के पिताजी ने दिया इतना कष्ट। है यहाँ कोई सभा में ऐसे व्यक्ति जिनके पिता ने उनको उबलते हुए तेल में डालने का प्रयत्न किया हो, जिनको हाथी को पैरों के नीचे कुचलने का प्रयास किया हो, जिसको त्रिशूल से मारने का प्रयास किया हो, जिसको विष पिला दिया हो, जहरीले सांपों के खड्डे में फेंक दिया हो? लेकिन प्रहलाद को कितना कष्ट, उस हिसाब से हमें कितना कष्ट मिल रहा है? कुछ भी नहीं। पांडवों को देखिए, पांडव भी भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त, उनको कितना कष्ट सहन करना पड़ा, उनके पत्नी का वस्त्र हरण हुआ सबके सामने, उनका सारा राज्य छीन लिया गया, और इतने बड़े राजा होने के बाद महल दरबार में रहने के आदि थे, फिर भी 13 साल जंगल में रहे, जमीन पर सोते थे, खाने के लिए कुछ ठीक नहीं, फल फूल से अपना खाना करते थे। कितना और कष्ट हुआ, कितने राक्षसों के साथ उनका युद्ध हुआ, और आखिर में भी जब उनको राज मिल गया तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी कि उनके सारे परिवार के लोग मर गए, सारे कौरव नष्ट हो गए, और पांडवों के रिश्तेदार भी कितने सारे मर गए, केवल 5 पांडव रह गए। कितना दुख, लेकिन फिर भी कृष्ण को कभी भूले नहीं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कष्ट में हमेशा डालते हैं, इसलिए लोग कृष्ण के शरण में आना घबराते हैं। वो सोचते हैं कृष्ण के पास आएंगे तो हम कष्ट में आ जाएंगे, लेकिन कृष्ण भगवान कष्ट में इसलिए डालते हैं कि हमारा शुद्धिकरण हो, जल्दी से जल्दी हम उनके धाम में जाएं। जब कोई शिल्पकार मूर्ति बनाता है तो ठोकर मार के ही मूर्ति बनाता है, नहीं मालिश करके नहीं बनाता है, पत्थर को ठोकर मार मार के सुंदर रूप बना देता है। तो भगवान भी हमें ऐसे कठिन परिस्थिति में डालते हैं ठोकर मारकर हमारी भक्ति को परिपक्व बनाने के लिए। लेकिन पांडव प्रहलाद सुदामा जैसे भक्त कच्चे भक्त नहीं थे, पक्के भक्त थे, तो उनको ऐसे ठोकर मारने की क्या आवश्यकता थी भगवान की, ये प्रश्न आ सकता है। हम कच्चे भक्तों के लिए एक उदाहरण देने के लिए कि देखो जो पक्के भक्त होते हैं कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उनकी भक्ति में डगमगाते नहीं है, उनकी भक्ति बल के बढ़ जाती है भगवान के प्रति, ताकि हम भी याद करें कि हमारे जीवन में जब कठिनाई आती है तो हमें सुदामा को, प्रहलाद को, पांडवों को याद करना चाहिए कि हमारे कष्ट जो है उनके कष्ट के सामने तो कुछ भी नहीं है, तो हमें क्यों विचलित होना चाहिए, हमें क्यों भगवान की भक्ति छोड़नी चाहिए। इस तरह से भगवान अपने भक्तों का गुणगान सारे विश्व भर में करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं सारे समाज को कि देखो मेरे भक्त कितने महान हैं, इतना कष्ट होने के बाद भी कितने तीव्रता से भक्ति करते हैं, मेरा शरण कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये है, इसलिए हमें कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। जो भी ये संसार में रहता है उसको कष्ट आने ही वाला है, दुख के सागर में रहकर कष्ट आना अनिवार्य है, लेकिन जो भक्त शरण में जाता है श्री कृष्ण का, वो कष्ट से हमेशा मुक्त होने का पथ अपना लेता है। ठीक है।